ओम शांति। आज भट्टी के लास्ट दिन के शुरुआत हम बाबा के अथक कर्मनिष्ठ शांत चित्त सरल चित्त विशेष आत्मात्म प्रकाश भाई से करेंगे। नाम ही है आत्मा मीन्स आत्मा प्रकाश, आत्मा में प्रकाश है कौन सी, पहले सबसे पहले ज्ञान की प्रकाश है। तो आप बाबा का जो ईश्वरीय सत्य ज्ञान है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष हमारे जो भी ज्ञानामृत छपते हैं, हमारी शांतिवन में ज्ञानामृत प्रेस है, आप सबने शायद देखी होगी, और उस ज्ञानामृत के आप संपादक हो। कई प्रकार की पुस्तकें, सभी प्रकार की बाबा के ज्ञान की पुस्तकें जो हम सबको देते हैं, सेलिंग करते हैं, 150 से भी ज्यादा जो पुस्तकें आज तक चलती आई है उसका रिप्रिंटिंग, जितनी आवश्यकता उस हिसाब से करते, फिर लिटरेचर डिपार्टमेंट में भेजते, सब सेंटर्सों में ले जाते, ये सारा ही छपाई का काम विशेष जिम्मेवारी से आप करते हो। विंग्स की भी पत्रिकाएं निकलती है, कई प्रकार के अलग अलग चीजें होती है जो आप सब नीचे देखते हो, सारी प्रिंटिंग हमारी नीचे जो प्रेस है उसमें होती है और उसके जिम्मेवार आप हो। आप बाबा के बहुत ही पुराने, जिन्होंने बाबा और मम्मा की भी पालना ली है और बड़ा प्यार है बाबा मम्मा से, और इसीलिए आज आपको यहाँ आमंत्रित किया है कि आप ऐसे बाबा मम्मा की पालना की बातें सुनाकर यहाँ बैठे, उन्होंने लगभग नहीं देखा होगा बाबा मम्मा को, किसी ने देखा है साकार बाबा को, देखा है नहीं
कौन
देखो किसी ने भी नहीं देखा,
बाबा को मम्मा को,
मम्मा को तो कहाँ देखा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को बहन जी ने देखा, टीचर है बाकी क्लास वालों ने आपसे सुना होगा, टीचर से भी कुछ ना कुछ बातें, लेकिन हर एक का अपना अपना अनुभव होता है। तो विशेष आज आत्म प्रकाश भाई हमें बाबा मम्मा की पालना के विषय में अवगत कराएंगे। आप इतनी अथक सेवा दिल्ली से करते आए, सबको पता होगा पहले दिल्ली में हमारी चित्रशाला भी थी, प्रेस भी थी, आप सब दिल्ली के नजदीक हो, फरीदाबाद की तरफ, अच्छा
इसीलिए सब जान पहचान,
हाँ सब जानने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए तो भाई साहब नए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इतना बाबा का कार्य कर रहे हैं, सालों से करते हैं और जिम्मेवारी से करते हैं। आपके लिए यही कहूंगी कि आपके कार्यों की ही कमाल है, आपने सदा जलाई है कार्यों की मशाल, करते रहते कुछ न कुछ नवीनताएं भी, तो ऐसे बाबा आपको टचिंग देता रहता, प्रेरणाएं देते रहते और सबको आपका लाभ भी मिलता रहता है। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई को, स्वागत है आपका एक हाथ की ताली से हमारी आज की क्लास में।
ओम शांति आप सभी, और साथ साथ मैं भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली है कि कहाँ बैठे हैं आप, ये कौन सी भूमि पर बैठे हैं। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, देखो आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, देखो आज बाबा ने बड़ी महिमा की माताओं की और मम्मा के भी मामा की, आज बहुत उस धरनी पर बैठे हैं जहां पर इन दो हस्तियों का, जिसकी सब धर्मों वालों ने महिमा किया, हम तो प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, कई उनको एडम एंड ईव कहते हैं, यानी क्रिश्चियन लोग वो भी इसको मान मानते हैं, आदम और बीबी कहते हैं मुसलमान लोग, एक खुदा की, शिव बाबा की, और एक इन दो महान आत्माओं की सब धर्म वालों में मान्यता है। तो ऐसी धरनी पर आप पधारे हैं योग तपस्या करने के लिए, भट्टी करने के लिए, बहुत बहुत आपका सौभाग्य है। और हम भी पिछले 58 वर्ष से इस ज्ञान में चल रहे हैं और लगभग 12 वर्ष तक बाबा मामा से मिलने का मौका मिला, उनसे रूबरू डायरेक्शन करेक्शन और किसी एक्शन में आने का भी मौका मिला, जिसे पालना मिली, क्योंकि बाबा ने हमको चुना, आप सभी को चुना है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इस वक्त 7 बिलियन से भी ज्यादा इस सृष्टि मंच पर जीवात्माएं विराजमान है, उसमें से हम कितने हैं, 9 लाख कहते हैं, तो थोड़ा ज्यादा या कम हो सकते हैं। वो बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने बाबा को पहचाना है, भगवान को पहचाना है और उसके कार्य में लगे हुए हैं। एक तो बाबा ने चुना, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, साथ साथ ये भी हम कहेंगे फिर किसी कार्य में लगा दिया, उसकी कोई सेवा में लग गए, ये बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है। पद्मा पदम भाग्यशाली हम और आप सभी। तो जब हम इस ज्ञान में आए थे 58 वर्ष पहले, क्यों थोड़ा बैकग्राउंड सुना दे, बचपन में बड़ी भक्ति की थी, 10 साल की आयु में ही ये रामायण महाभारत गीता या जो भागवत पुराण विशेष जो जिसमें रोचक कथाएं हैं सब सुन ली थी अपने लोकल फादर से, बड़ी भावना थी, यही चाहते थे। याद है एक दफा तो मंदिर में जाकर एक टांग पर भी खड़े होकर के, जैसे ध्रुव भगत वो भक्ति करते हैं, राम राम वो तो पता था नहीं, वही जपते थे, बहुत भक्ति की हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, कौन है ये पंडे और ये लोग, उनके आचरण से नास्तिक तो नहीं बने, परंतु ना नास्तिक ना नास्तिक, हाँ ठीक है, परमात्मा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बस नेहरू कहता है कर्म योगी बनो, वही काफी, कर्म करो और उसकी पाल की इच्छा मत करो, यही था। तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे पटियाला में, लोग माता पिता ने भाई ने कहा था पढ़ने के लिए, उस समय ये ज्ञान मिला हमको। एक हमारे भाई हैं इंदौर के ओम प्रकाश जी, वो भी साथ साथ पढ़ते थे, उनसे हमें ज्ञान मिला, जैसे पहला लेसन होता है कौन सा, आप आत्मा है, जब ये सुनाया साथ साथ हमारा रूम था, तो बहुत दिन तक डिस्कशन करते रहे, कई दिन, वो कहे आप आत्मा है, हम कहें कैसे आत्मा, ये तो मशीनरी है, कई समझते होंगे उसमें ये सब मशीनरी के पुर्जे हैं, एक भी पुर्जा फेल होगा तो मशीनरी बंद हो जाती है, फरीदाबाद में तो बहुत मशीनरी बनती है अगर एक भी पुर्जा खराब होगा तो मशीनरी खत्म, उसको कंडम कर देते हैं अगर ज्यादा खराब हो जाती है तो, इस तरह ये भी एक मशीनरी है, अगर उसमें हार्ट है, ये है, वाल्व है, बड़ी जबरदस्त मशीनरी है प्रकृति ने बनाई है, तो कैसे हम समझे हम आत्मा है। बड़ी बातें होती रही, डिस्कशन होती रही, कई दिन तक चलते रहे, उससे अट्रैक्शन होती थी बात से। तो एक दिन उसने, हम अंदर से मानते थे कि हम आत्मा है, ऐसे नहीं कि नहीं मानते थे, कि हिंदू धर्म में आत्मा और शरीर की बात तो चलती है, मानते अवश्य थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लगे रहे और चलते रहे, हम नहीं माने नहीं माने। एक दिन उसने कहा आप ये मान जाओ भाई कि आप आत्मा है। अच्छा, हमने कहा ठीक है, आज हम ये मानते हैं कि मैं आत्मा हूं। बस इतना कहना था, इतनी बात माननी थी, जीवन में एक चेंज आ रहा था, आना शुरू हो गया। उसमें देखो बहुत भाई बहन कम थे, सेंटर्स भी बहुत कम थे। मैं सारे इंडिया में 10, 12, 15 सेंटर मुश्किल से होंगे। बॉम्बे था, पुणे था, बेंगलोर भी नहीं था, दिल्ली में एक कमला नगर था, एक रजौरी गार्डन अभी खुला था, और कोई सेंटर, पटेल नगर कुछ नहीं था, और पंजाब में केवल अमृतसर, हरगोबिंदपुर और सहारनपुर, और कोई सेंटर नहीं थे। अंबाला भी था, अंबाला से ही ज्ञान मिल के आए थे। बहुत कम भाई थे, बहुत कम सेंटर्स थे। अभी जैसे बाबा का ज्ञान भी अभी स्पष्ट नहीं था, उस समय कभी नहीं कहते थे आत्मा बिंदु है या परमात्मा बिंदु है, अंगुष्ठ सदृश ये मानते थे तब। तो जब ये सुनते ही चेंज आना शुरू हुआ, जो कुछ वैक्यूम था अंदर, बल कितना कोई पैसे वाला हो, कितना सब कुछ हो, हेल्थ अच्छी हो, वेल्थ अच्छी हो, सब कुछ हो, समथिंग मिसिंग, हर एक के दिल में, हर एक के कुछ मिस है, हर एक इंसान में कुछ मिसिंग है। तो हमारे भी मिसिंग था, क्योंकि देह अभिमान बहुत था। यानी सभी बुराइयों की जड़, सभी विकारों की जड़, सभी सब प्रॉब्लम्स क्या जो है जड़ है, वो है देह अभिमान। वो तो सारी दुनिया में देह अभिमान का बोलबाला है आज, वो हमारे में भी था। जब समझा तुम देही हो, शरीर नहीं हो, ये सुनते ही बाबा भी फ्री थे, उन दिनों में बहुत कम बचे थे, जैसे बाबा ने पकड़ लिया ऐसे, हम बताया आपको, बुद्धि को पकड़ लिया, और एकदम जैसे इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, आई एम सोल डॉट बॉडी, आई एम सोल डॉट, जगह जगह लिखना शुरू कर दिया। तो अभ्यास हो गया, जिसको भी देखे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, दृष्टि वृत्ति फटाफट प्योर होने शुरू होगी, कमाल हो गया। हमने उसको कहा भी बताओ और क्या है आपके पास हीरे मोती, क्या ज्ञान है, जल्दी जल्दी सुनाओ हमको। तो आत्मा क्या है, परमात्मा शिव है, आप बताइए परमात्मा के बारे में कितनी भ्रांतियां है, कितनी भ्रांतियां है। कोई कहता है परमात्मा है ही नहीं, कोई कहता है मैं परमात्मा हूं, कोई कहता है राम है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, ब्रह्म है, सारी भ्रांतियां फैली हुई है एक गॉड के बारे में। तो जब उसने कहा गॉड इज शिवा, निराकार ज्योति बिंदु, ना उसका नाक है, ना मुंह है, ना कान है, ये है, बहुत यानी सुंदर, अच्छी बात लगी, बहुत सुंदर लगा कि ये राइट बात है, यानी एक्यूरेट बात है, यानी रैशनल बात है ये। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र की बात सुनी कि 5000 वर्ष क्या है, फिर हूबो रिपीट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं, हम बताएं आपको राम कौन है, रावण कौन है, कृष्ण कौन है, कंस कौन है, ऐसी रैशनल बातें सुन करके, और 84 लाख दुनिया नहीं है, सब कुछ सुना, किसी के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा, सब बातें ये बुद्धि में फिट होने लगी कि ये बात राइट है, ये ज्ञान जो है रैशनल है, एक्सपीरियंसेबल है, यानी वैल्यूएबल है, और कोई भक्ति का अंश नहीं है, ऐसा सुनने में बहुत सुंदर लगा। सारी जो हमारी उलझने थी वो खत्म हो गई, योग भी सीख लिया, मुरली पढ़ना भी शुरू कर दिया उस दिन, 2-3 दिन के बाद, कोई नो क्वेश्चन, हर एक चीज जैसे मैंने पहले सुनी हुई है, ऐसी महसूसता आने लगी। तो हमने कहा इतना सुंदर ज्ञान कहां से मिला आपको ये बात, जैसे ना पर्सन कोई अगर प्रदर्शनी देखे तो, जैसे हमारे इन्होंने बेलगाम में कहां देखी थी ना, वो हमारे वो कश्मीर में प्रदर्शनी देखी थी, इनका भी प्रश्न उठे, तो कोई प्रश्न ऐसा लगा कि ये मैंने ज्ञान पहले सुना हुआ है। बहुत चेंज आया विद इन वन आर टू डेज। हम सारे जो बुराइयां थी, खाना खाना, वो खेलना कूदना, कैरम खेलना, ये करना, सब चीज खत्म हो गई। तो दोस्तों से दोस्ती छूट गई, बोलना एकदम साइलेंस में चले गए हम। हमारे यहां सर्वे होती है, सर्वे करने जाए, किसी से बात नहीं करनी, अपने साइलेंस में जाए, आत्मा हूं इसी का अभ्यास कर रहे थे हम बार बार, क्योंकि देह अभिमान बहुत था। ये कहते ही वो भी आश्चर्य का है, क्योंकि बाबा पकड़ रहा था बुद्धि को, कि वो जो व्यक्ति था ओम प्रकाश, वो 6 मास पहले ज्ञान में आया था, उसका पढ़ाई करने में कि अविनाश तो सामने खड़ा है, क्या पढ़ाई करेंगे इतनी चार पांच साल। लेकिन बाबा ने उनको लिखा, साकार बाबा ने, बच्चे नहीं तुम जाओ पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, ये ज्ञान औरों को देना है, उनको समझाना है। तो बाबा के पत्र से ही वो ज्ञान, वो पढ़ाई पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आया था। तो जब ये ज्ञान मिला बड़ी खुशी हुई, खुशी का पारा नहीं, बहुत सुंदर। तो हमने कहा भाई आपको ये ज्ञान मिला कहां से है? उस वक्त कुछ चित्र नहीं थे, ना त्रिमूर्ति, ना जहाज, ना सीढ़ी, कुछ नहीं बना हुआ था। तो बताया कि ये तो बताया, फिर शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, सारी और बातें सुनाई। तो मैंने कहा जो सोर्स है उनको तो मिलने के लिए जाना चाहिए। देखिए अभी आप देख रहे हैं सारी दुख दर्द बढ़ रहा है, बहुत दुख दर्द बढ़ रहा है। अभी देखो नेपाल में आ गया, पहले वहां उत्तराखंड में आया था, फिर कश्मीर में आया था। डे बाई डे जो है सफरिंग्स, आतंकवाद है, सफरिंग्स जब बढ़ती चली जा रही है और बढ़नी है। ये भगवानों वाच, ये दुनिया बहुत दिन चलने वाली नहीं है। तो हमें अभी भी मालूम पड़ रहा है, तब भी ऐसे लगता था जब हम ज्ञान में है, तब भी ऐसा लगता था कि ये दुनिया गई के गई। वो 1857 था ना, 1957, और 100 साल पहले वो हुई थी लड़ाई, वो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वो हमारे भारत की थी वो, तो उसे वो कहते हैं स्वतंत्रता। अब 100 साल बीत गया, तो मैं कह अब आए के है, गए के गए। जब भी, जब से शिव बाबा ने बाबा में प्रवेश किया, तब से दुनिया कुछ विनाश तो सामने जैसे लगता ही था। स्वेज कनाल का झगड़ा था, इसराइल का झगड़ा था, ये था वो था, दुनिया को चैन नहीं था। हमने कहा विनाश हुआ क्यों हुआ? तो मैं बता रहा था कि क्यों सफरिंग्स बढ़ रही है। सफरिंग्स का कारण है इंसान के दुष्कर्म, करेक्ट है। अब नेपाल में क्यों है, भले कोई बैठा हो सुने, क्यों मरे कितने लोग, क्यों चले गए? आप मानेंगे कि कोई किसी को दुख देता नहीं है, इंसान के दुष्कर्म ही इसके वो है, उसके निमित्त बनते हैं। दुष्कर्म क्यों होते हैं? विकारों से, वाइसेस से, पांच बाबा सुनाते हैं पांच विकार। और पांच विकार क्यों होते हैं? देह अभिमान से, मूल कारण देह अभिमान। देह अभिमान क्यों होता है, उसका कारण क्या है बोलो? क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन देगा? कोई इंसान ज्ञान नहीं दे सकता। ये सारी इग्नोरेंस है, मैं हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, सारे झगड़े मैं के हैं। और मैं कौन हूं उसका ज्ञान एक शिव बाबा के और कोई दे नहीं सकता, वही दे सकता है। यानी ज्ञान सागर ही ज्ञान दे सकता है। जितने वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, आप देखो बड़े बड़े टेलीविजन पे आते हैं, पूछो अंत में कहता है वो ज्ञान क्या सुनाते हैं। एक बार एक दफा टेलीविजन खोला, देखा एक ऋषि कह रहे हैं, वो दाढ़ी वाले, कि एक चोर ने चोरी की, पकड़ा गया और उसके बाद वो जेल गया, फिर उसने वो उसको सजा होगी, कहता कुछ नहीं, चोरी करने वाला भी वही, पकड़ने वाला भी वही, सजा देने वाले वाला भी, सजा खाने वाला भी वही, क्या सब एक ही एक है, ये उनका ज्ञान है। अरे भाई कैसे कह सकते हैं? तो कुछ भी ज्ञान का गा कहीं पर भी नहीं है, ना शास्त्रों में, ना वो है। हाँ आटे में नमक है, वो को समझ आता नहीं है। तो एक अंत में आकर के शिव बाबा ही आकर के हमको तीसरा नेत्र देते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, हमारा हमें रोशनी देते हैं। तो जब मैंने ये ज्ञान सुना बड़ा अच्छा लगा। आप देखिए क्या हमारे शास्त्रों में है, ये इतनी बड़ी महापो रामायण है, आप देखते होंगे पहले कभी देखी होगी, क्या रामायण है, सीता है, राम है, रावण है, लक्ष्मण है, दशरथ है, हनुमान ओढ़ के जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, लंका में लड़ाई की, वो किया। और बाबा ने क्या कहा, एक शब्द बोला, क्या कहा बाबा ने बताओ? कि रावण ऐसा कभी था ही नहीं। आप बताइए कितनी वंडरफुल बात है। फिर जो लोग दशरथ वाला रावण मानते हैं, बाबा कहता है रावण ऐसा था ही नहीं, लंका ऐसी थी नहीं, सारी रामायण खत्म। बताओ आप देख लो, फुल फिनिश्ड। या फिर देखो महाभारत, हम भी कभी वो देखते थे उस पर, वो टीवी पर वो तीर जा रहा है, उधर से तीर आ रहा है, इधर से तीर आ रहा है, लड़ाई हो रही है, क्या क्या बताया है। बाबा ने कहा रामायण तो महाभारत के भी द्वापर के अंत में हुई थी। कब हुई? अभी महाभारत है ये। कितनी जबरदस्त फिलॉसफी आप बताइए, यानी ये कौन देख कह सकता है? ये दुनिया वाले कहें तो उनको लोग पकड़ ले कि तुम क्या उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो। ये भगवान के महावाक्य देखो बताओ। गंगा पतित पावनी नहीं है, कितना मर्जी ना लो, हू सिंह परमात्मा स्वयं बता रहा है। 84 लाख तुम कभी नहीं बनोगे, गधा घोड़ा कभी बनोगे नहीं, ये खुशी किसने दी? भगवान ने बताई। कितनी जबरदस्त बातें हैं। ये चीजें सुन सुन के और पढ़ पढ़ के हमने पढ़ी। एक वो उस वक्त त्रिमूर्ति निकलती थी, जगदीश भाई निकालते थे, बड़ा आनंद आया। मैंने कहा ये स्वयं ज्ञान सागर के ज्ञान दे ही नहीं सकता। जो रैशनल बातें हैं, यानी रियल बातें हैं, जो दिल कुछ लगने वाली बातें, ये कौन बता सकता है? आप सोचो, किसी ने आज तक कहा नहीं। तो हम भागे फिर बाबा से मिलने के लिए। हम बताएं, एक हफ्ता 10 दिन वो होंगे, भाई ये तो बड़ा वंडरफुल चीज है। गए दिल्ली में, बाबा आए हुए थे तब उन दोनों में सर्दियों में, बाबा यहाँ नहीं होते थे तो दिल्ली में आते थे, दिल्ली में बॉम्बे में जाया करते थे। तो बाबा से मिलने के लिए गए भाग करके। तो अभी थोड़े दिन हुए थे, छोटे बच्चे थे बाबा के, तो रात्रि को पहुंचे। आप ध्यान, दिल्ली कितनी बड़ी है, रजौरी गार्डन में आए बाबा, 28D में आए हुए थे। तो रात को पहुंच के ऐसा लगे जैसे अपने घर जा रहे हैं, सच्ची। नहीं तो रात को 11 बजे पहुंचेंगे तो क्या, कौन खाना खिलाया, कैसे करेगा? तो खाया खाना सब कुछ। सवेरे बाबा मामा से मिलने का मौका मिला, तो बाबा मामा से मिले तो उनको देखते ही क्या फीलिंग आई पहले, यही वास्तव में हमारे रियल माँ बाप हैं। हम बताया ऐसे लगते थे जैसे दो फरिश्ते बैठे हैं, वाइट, हर चीज से वाइट, हर एक चीज वाइट थी। और यही हमारे रियल में माता पिता है, ऐसी फीलिंग आई हमें। जब किसी ने नहीं कहा था कि कैसे मिलना है, क्या मिलना, अभी नए नए थे तो मम्मा के गोद में गए। मम्मा बाबा की गोद में जाते थे, माँ थी वो, और बाबा की गोद में गए, थपथपाया, पूछा सब कुछ। तो पहला पहला वरदान जो बाबा ने दिया वो आप सुन के आश्चर्य कहेंगे। पता लगा कि मैं इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे। बाबा ने क्या कहा? अभी हम 15 दिन 10 दिन के ही थे, बाबा ने ये वरदान दे दिया, बच्चे ये बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है और टाइम कहाँ है अभी, बिना सामने कराओ, तब भी कह दिया, और ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। ये बाबा ने वरदान, भृगु ऋषि है ना बाबा, सब जानता है से, किसी के हर आत्मा के आदि मजंतों को समझ सकता है, भले वो कुछ अंदर ना जाने, लेकिन बाबा कहते हैं मैं समझ सकता हूँ किसी को देख करके भी इसका क्या भविष्य है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, बस सामने का किसी कार्य में लग जाओ, ये कहा। तो हमने कोशिश की भाई हम भाई सर्विस कर ले, कोई जॉब ले ले के, लेकिन कोई हमें इच्छा वो मालूम नहीं पड़ता था कैसे करना है क्या करना है। तो और बाबा ने फिर हमने बाबा को लेटर लिखा इंग्लिश में, तब देखो बाबा कैसे पालना करते हैं। हाँ बाबा, अच्छा हम पहले एक और बात सुनाता हूँ। हम जब क्लास के बाद बाबा मम्मा और हम सब पीछे पीछे घूमने जाते थे, जैसे अब यहाँ तो जाते हैं नक्की लेक की तरफ, उन दिनों में रजौरी गार्डन बिल्कुल सुनसान था, कोई ऐसी कोई इतनी आबादी थी नहीं, तो खेतों में जाते थे, ऐसे जाते थे। हम भी साथ साथ चलते गए, तो मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा उन दिनों में चाय पिला रहे थे, टोली खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई भंडारी नहीं होती थी, अभी तो भंडारी रखते ना सेंटर पर भी, तो भंडारी नहीं थी। मम्मा ये सारा जो है, जिसे छोटा बच्चा माँ से पूछते, ये सब चल कैसे रहा है, कौन दे रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कैसे करते, कोई चीज है नहीं, कैसे नहीं? तो मम्मा ने क्या कहा होगा बोलो? मम्मा ने ऊपर इशारा किया, देखो अभी तो फिर भी कुछ होता है, कुछ चीज बिल्डिंग बनाए, कुछ करेंगे, बहनें कहेंगी सब करो, या कुछ थोड़ा इशारा करेगी, उस समय नहीं, ऊपर ऊपर की तरफ इशारा था। तो कहने का मतलब यह, कभी कोई किसी को इशारा तक भी, उस वक्त जबकि पार्ट भी ऐसा था, बेगरी कहें या सेमी बेगरी, ऐसा पार्ट था सब खा रहे पी रहे सब बैठे हैं, सब रिमझिम लगी हुई है, ऐसा लगता था कि भागवत रिपीट हो रहा है। भागवत में ना सब दादियां वही थी और उस तो यंग एज थी सब, तो जैसे भागवत चल रहा है ऐसा देखने में, कोई किसी को बाबा मिल रहा है, किसी को बाबा प्यार कर रहा है, किसी को कुछ हो रहा है ऐसे। तो हम वहां से वापस आए तो बाबा को लेटर लिखा है इंग्लिश में कि बाबा आप जैसे आपने कहा आई डोंट वांट टू, इंजीनियर क्या करता है डिजाइन बिल्डिंग एंड बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी स्टोन, एक जो बहुत बड़ा आप एडिफिस एक बिल्डिंग बना रहे हैं सतयुगी गोल्डन एज न्यू वर्ल्ड का, उसमें एक हम पत्थर बनना चाहते हैं। फिर लिखा बाबा आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड हाईवेज बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परम धाम एंड कमिंग टू देन गोल्डन एज, कि मैं उस हाईवे पर भागना चाहता हूं जो परम धाम जा रहा है सतयुग में आ रहा है। फिर लिखा आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, मशीनरी होती है ना, परंतु आई वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी। बाबा कहते थे तब, अब भी मुरली में आता है कि जो ब्रह्मा कुमारी सा है ये किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर बना के पत्र लिखा, बाबा ने जवाब दिया इंग्लिश में, जवाब दिया बाबा ने चाइल्ड, वो लिखकर के मोस्ट बिलीवर चाइल्ड जो लिखते हैं, बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू को इंजीनियर्स एंड टू योर पेरेंट्स। ये बाबा का दूसरा वरदान को या एक वो डायरेक्शन को आया। तो हमने कहा ठीक है, बाबा कह रहे हैं पढ़ो और ये साथ साथ ज्ञान भी दो, तो ऐसे करना शुरू कर दिया। खूब क्या, फिर हमने इसी कार्य में लग गए। हम हॉस्टल में रहते थे दोनों, हम भाई जो दूसरे भी, एक दरी बिछाई अपने कमरे में, ग्रामोफोन लाया, वो सुई वाला ग्रामोफोन होता था, आजकल तो टेप है, उन दिनों में वो होते थे ग्रामोफोन, सुई लगाते थे, रिकॉर्ड लगाते थे, वो बजाने शुरू किए, आसपास अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, वहीं पर ही छोटी सी गीता पाठशाला शुरू कर दी ज्ञान देना। तो वार्डन ने कहा दी तुम क्या करते हो, लाल बत्ती जाए, उन विषय बाबा नहीं लाल बत्ती होती थी वो लाल बल्ब, यानी हमने अपनी सेवा बाबा ने जो कहा कम से कम उसको चालू कर दिया। तो वार्डन ने कहा ये तो यहां हो सकता नहीं, हमने छोड़ो, हम हॉस्टल छोड़ दिया, हम तो निर्बंधन थे, लोग माता पिता गांव में रहते थे, हॉस्टल छोड़कर मकान लिया, कमरा लिया, उसमें एक माता को बुलाया अम्बाला से, दिन रात योग कराते रहते थे, लोगों की सेवा करते रहते थे, कई परिवार भी निकल आए, तो ये सेवा चालू होगी। और बीच में बार बार बाबा मामा से मिलने आते थे, उनसे डायरेक्शन लेने आते थे। एक दफा मधुबन आए, उस वक्त के मधुबन बार बार नहीं आते, जैसे अभी आप साल में चार दफा आते हो, साल में एक दो बार आते थे, वो भी गर्मियों के मौसम में, क्योंकि यहां बड़ी बारिश होती थी, वो होता था बहुत कुछ, क्योंकि यहां कोई इतनी ज्यादा सेवा नहीं थी। तो बाबा को हम उस वक्त, बाबा की एज 80 साल की थी, 80 ईयर्स उनकी एज थी, एक नजारा देखा बाबा का कि बाबा उस वक्त जो अभी आप देख रहे हैं ये कैसा, यहां क्या था, कोई बिल्डिंग नहीं थी उस वक्त, 1958 में कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना हिस्ट्री हॉल था, ना ये हॉल था, ना उस सामने बिल्डिंग थी, केवल ये टीन वाला है ना आप देख रहे हैं, ये यही था जहां पर बाबा मम्मा और कुछ और लोग रहते थे। तो और वो जो जहां शांति समय वहां टेनिस कोर्ट था, वो चीज थी, घास था और वो था, कच्चा था सारा, कोई वो नहीं था, पक्का क्यों नहीं था। तो बाबा हम जब आए, बाबा वो क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, यानी एट द एज ऑफ 80, दादा विश्वरतन जैसे बच्चे नहीं खेलते गलियों में जैसे होता है, वो बाबा फेंकते थे, अब वो बाबा ऐसे लगाते थे, तो वो नजारा देख के बड़ा आश्चर्य लगा, एट द एज ऑफ 80 और कौन खेल रहा है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा उनमें प्रवेश है ये, और बच्चे हंस रहे हैं, वो ले रहे। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, मैंने कहा फोटो लेना चाहिए, बड़ा सुंदर फोटो है। तो बाबा ने खेल रोका और बाबा ने कहा बच्चे नहीं लिए, क्या करने लेके। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये, मेरा तो फोटो आएगा नहीं, और ये शरीर किसी काम का नहीं। यानी बाबा हमेशा शिव बाबा को आगे रखते थे, अपने को छुपाते थे। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। और उन्होंने फोटो भी कौन से, कैमरे भी कौन से होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे थे वो तो थे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है बाबा आप कह रहे तो बन लेता नहीं। फिर भी फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे दिल है तो ले लो। कहने का मतलब है एट दिस एज कितनी बाबा की फिटिंग थी। और बाबा क्या बच्चों को, जैसे वो सीन याद आया कि यमुना के कंठे पर गेंद थी ना वो उसमें डाल दी, उस प्रकार से भागवत जो है वो रिपीट हो रही थी। ये हमने कुछ दिन रहे, फिर बाबा के पास इंस्ट्रक्शन लेकर के वापस गए। फिर बाबा ने दूसरा कहा था कि अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो। समर वेकेशन थी, वहां पर हम गए अपने लौकिक घर में, पहले माता जी को ज्ञान दिया, फिर लौकिक पिता जी को ज्ञान दिया, सिस्टर को ज्ञान दिया, सबको ज्ञान सुनाया। गांव में एक छोटी सी क्लास शुरू कर दी। तो हमारे लौकिक फादर बड़े भगत थे, श्री कृष्ण के बहुत भगत थे। उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि ज्ञान तो आपका ठीक है। उनको मैंने कमेंट्री लिख दी, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत है, जैसे होता ना कमेंट्री आप करते। वो उर्दू में पढ़ते आते थे, सारा दिन खेतों में जाते थे, करते थे। उनने कहा यदि बाबा आपका मुझे कुछ दिखा दे मैं तब मानूं कि ये शिव परमात्मा ज्ञान दे रहा है। मैंने कहा मैंने तो आज तक देखा नहीं। और हमारे यहां पटियाला में भोग लगाने के लिए आती थी ध्यानी दादी, एक थी शायद आप जानते होंगे, ध्यानी दादी आती थी गुरुवार को या इतवार को, वो भोग लगाती थी और वो ऐसे करते थे और कभी फूल देंगे कभी वो करेंगे। मैंने कहा भी हो सकता है भी, हम तो जानते नहीं ना, हमें आज तक कुछ दिखाई दिया है। और बाबा भी ध्यान के बारे में कुछ कहते नहीं, कहते ध्यान क्या है, ये कोई इसमें कुछ कमाई नहीं है, तो हमें कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। मैंने कहा हमें तो मिला ध्यान, यानी आपको कैसे दिखा देगा, आपने अभी ना सेंटर देखा है ना बाबा से मिले ना मम्मा से मिले। कहता अगर बाबा आपका दिखा दे तो तब मैं मानूंगा ये ज्ञान ठीक है। उन्होंने भक्ति बड़ी की। तो एक दिन हम भी वहां बैठे भोग लगाए, अपनी क्लास तो थी, वो क्लास में कुछ समय के बाद उठ के खड़े हो गए, ये रियल मैं बता रहा हूं, खड़े हो गए और वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर पकड़े कभी इधर पकड़े कभी इधर पकड़े, वो जहां पकड़ने जाए वो उधर चला जाए, वो वहां पकड़े वो छोटा, वो कहें भी क्या बात है, कभी इधर पकड़े, वो घूम रहे थे, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा था। अच्छा, बड़े उदास हुए और नीचे वो फिर आए। मैं बड़ा खुश था, मैंने कुछ हो रहा है, कुछ ना समथिंग इज हैपनिंग, यानी कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है इनको, बाबा दिखा रहा है शायद। तो मैंने पूछा कहाँ गए थे, कहते ऊपर हम कहीं गए तो बहुत सुंदर श्री कृष्ण का बच्चे रूप में, बहुत छोटा बच्चा जैसे भक्ति मार्ग में सुंदर दिखाते हैं, तो मैं उनको पकड़ने की कोशिश करता हूं, मैं यहां पकड़ू तो वहां चला जाए, यहां पकड़ू तो वहां चला, मेरे हाथ में नहीं आया। फिर मैंने कहा क्या हुआ, फिर क्या आपके अभी तक उन्होंने अपना बाबा नहीं बनाया था, आपके बाबा फिर आए। बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम धारणाओं पर चलोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा, तब उससे तुम मिल सकोगे। उनने कहा ठीक है। धारणा थी, बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन जो खान पान ये वो सब चीज छोड़ छाड़ के उनने कहा ठीक है मैं चलता हूं, मानता हूं निश्चय बुद्धि हो गई। इसी बात से कि दुनिया में साक्षात्कार करना एक बहुत बड़ी बात है, श्री कृष्ण को देखना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उनको घर बैठे दिखाई दे दिया। तो मैं कहूं देखो ना अभी कि बाबा से मिले या ना मम्मा से मिले ना कि दादी से मिले या दीदी से, उनने मैं दादी नहीं बहने बड़ी बहने कहते थे, तो इनको क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हम अगले हफ्ते भोग लगाना शुरू किया, हमने कहा अच्छा है, हम तो दो महीने छुट्टी थी। फिर वो ध्यान में चले गए, ध्यान में जाकर के फिर श्री कृष्ण उनको दिखाई दिया, फिर उनको पकड़ के इतना गोद में आंसू बहाया जैसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बहुत खुश हुए और सारा अनुभव सुनाया, सारे वो बैठे थे गांव वाले भी, वो भी आश्चर्य कहें कि इसको क्या हो गया। भगत, उनको हम भगत जी कहते थे, वो क्या करते थे जब पाकिस्तान में हम थे, वो हकीम थे वो, और वो दूसरे मोहल्ले में जाकर के ये भागवत पुराण लोगों को सुनाते थे, हम भी साथ साथ सुनते थे, भक्ति बहुत की हुई थी। तो ये सुनकर ये देखकर मुझे बड़ा खुशी हुई, मैंने कहा देव कम से कम हमारी फैमिली में, लौकिक फैमिली में एक तो ध्यान में जाना शुरू हुआ। और वो मैंने बाबा को लिखा, बाबा बाबा मैंने, जैसे बच्चे होते हैं ना, हमारा लोग एक फादर ध्यान में जाना शुरू कर दिया है। बाबा ने कहा मैंने भी बहुत ध्यान की देखा है, ये बाबा ने कोई वैल्यू नहीं दी। मैं तो बहुत खुश था कि बाबा हमारा लौकिक फादर ध्यान में गया है, लेकिन बाबा ने कहा ठीक है मैंने भी बहुत ध्यान देखा है, पत्र बाबा का आया तो। लेकिन उनका ऐसा ध्यान का पाठ खुला, हम के बाबा लौकिक, हम उनको बाबा कहते थे, जो बाबा आप बाबा से पूछ के आओ, वो ऐसा एक्यूरेट पूछ के आते थे बात राइट। सारी फैमिली का जो हमने लैंड बेचनी थी, बेचने के नहीं बेचनी, बाबा से पूछ के आओ, बाबा कह रहा नहीं बेचनी। फिर हमने कहा कुछ समय के बाद बेचनी है, बाबा ने कहा बेचनी। यानी जो जो बाबा से बातें पूछे लौकिक भी, तो पूछ के हम तो आश्चर्य कहेंगे, देखो बाबा इनको कैसा बाबा ने इसको पकड़ लिया, तुम्हारी फैमिली में लौकिक में एक इसको पकड़ने से क्या सारी पूरी फैमिली, माता पिता बहने तीन चार भाई थे, सारे ज्ञान में आ गए, पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा। अब तक सलामत है, एक लौकिक फादर शरीर छोड़ गया, अभी तक भी सलामत है। हमारी लौकिक माता जी भी 110 साल की अभी तक है, अभी भी जिंदा है, हमारे साथ रहती है। और उसने तो बहुत आनंद बाबा से, हम कहते हैं देखो अभी जब देखते हैं ना बाबा से लोग मिलते हैं, कहते हमने बहुत मिला है, हमें तो बाबा मम्मा ने अपने साथ झूले में बिठा करके झूला झुलाया है, हम अब निश्चिंत है। इस प्रकार से पूरा परिवार ज्ञान में चल पड़ा, जो बाबा ने कहा था अपन लौकिक परिवार को ज्ञान में दो, वो भी पूरा हुआ। और इसी प्रकार से हम चलते रहे, और पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, बाबा ने कहा था पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, पढ़ रहे थे परंतु विद डिस इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट नहीं। कभी प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कभी वो बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे, आते थे पुण्य बाबा मम्मा, कभी कोई फंक्शन है, कभी भोग है, तो हफ्ता हफ्ता क्लास नहीं करनी। जब जाते थे कॉलेज में तो लोग हंसते थे, ये देखो आ गए हैं फ्रेंड्स लोग आ गए, कोई क्लास करते नहीं है, पढ़ाई पास कैसे होंगे। विदाउट एनी स्टडी आई टेल यू, चार साल बीत के लेकिन फिर भी हम पास हो गए, हम बता दें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम बताए आपको पढ़ाई में बिल्कुल लगाव नहीं था। जाएंगे अपने मिलजुल के आ जाएंगे और हमारी हाजिरी दूसरे लोग लगा देते थे, हाजिरी पूरी चाहिए, तो आप मानेंगे विदाउट इंटरेस्ट। अब मुझे अब भी पता नहीं क्या इंजीनियरिंग होती है, बोलो उसने पता नहीं क्यों पास कर दिया, हम बता आई डोंट नो। पास होके चार साल बीत के बाबा मामा को लौकिक फादर मदर को लेके हम आए बाबा मामा से मिलने के लिए, अब क्या करना है। डिग्री लेने नहीं कभी गए भाई, डिग्री ले वो चोगा पहने हम कभी नहीं गए, मैंने डिग्री लेंगे तो बाबा वो कभी और किसी तरफ चला जाए। बाबा मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो कहा था तुम्हें कि ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, तो नहीं आई। तब उस वक्त 1961 में बाबा ने हमको दिल्ली भेजा जगदीश भाई के पास, हम 61 से लेकर 65 तक उनके साथ रहे, ट्रेनिंग दी, कुछ किया, बहुत कुछ सीखा। ब्रदर जगदीश जी टॉप एक हमारे भाइयों में से थे, बहनों भाइयों सब में मैं तो टॉप, इतने वो यानी योगी ज्ञानी तपस्वी, इकोनॉमिक में एकदम इकोनॉमिकल यानी कम खर्च बाला निशीन काम करने वाले स्पोक्समैन, बहुत खूबियां उनमें थी, उनकी खूबियां हमने कोशिश किया हम ले उनसे, और बहुत कुछ ट्रेनिंग दिया सिखाया प्रिंटिंग पे वो इतनी उनकी अच्छी हेल्थ थी, हम जाते थे जब वो हमें ले आते थे प्रेस में दिखाने के लिए, वो चलते थे तो हम दौड़ते थे क्योंकि वो उनकी टांगे बहुत लंबी थी, बड़े हेल्दी थे वो, इतनी अच्छी हेल्थ थी उनकी। इस प्रकार से काफी दिन बाहर है, फिर क्या हुआ बाबा मां से मिलते रहे जुलते रहे, होता रहा सब कुछ। एक दफा आपको मालूम हो बाबा आए थे वहां पर कमांडर वो मेजर की कोठी में आए थे, आपको याद होगा बाबा फिर बाद में दो दफा आया, केवल बाबा आते थे जो कोई निमंत्रण मिलता था किसी बड़े आदमी का तब आते थे दिल्ली में, आए वो मेजर की कोठी में। तो देखो बाबा हर संबंध की भाषणा देते हैं, तो हम भी जाते थे मुरली सुनने के लिए। एक दिन सुबह सुबह बाबा ने क्या कहा, आओ बच्चे आओ, बाबा सुबह सुबह दूध पीते थे फीका, तो हम सब बच्चे जाते थे, बाबा ने क्या सबको बुला बुला के मुख में चम्मच से दूध पिलाया। क्यों, बाबा ने यह भाषणा दी कि मैं तुम्हारी मां भी हूं, आई एम योर मदर। भले है तो ज्ञान दूध तो पिलाती ही थे, लेकिन बाबा ने उस दिन सभी बच्चे जो आ गए सबको चम्मच से दूध पिलाया ये भाषणा देने के लिए, मैं तुम्हारी डियरेस्ट मदर हूं, ये भाषणा दी। और एक दफा माथुर जी कोठी में आए, हमने प्रदर्शनी लगाई थी वहां पर, वो करोल बाग के पास जो हाल है ना, कौन सा है वो, कम्युनिटी हॉल, वो बाबा देखने के लिए आए। तो बाबा हम जब चीज पहले, हाँ क्या हुआ था, ये जो प्रिंटिंग के बाद हमको एक वो प्रदर्शनी की मेंशन हुई, प्रदर्शनी बनी थी तो हम एक 20 चित्रों का सेट बना करके दिल्ली से बाबा के पास मधुबन में आए। अब ये 1965 की बात है या याद नहीं मुझे, तो बाबा और दीदी दोनों देखने के लिए आए हाल में, है ना, हिस्ट्री हॉल बन चुका था। बाबा ने देखा, अच्छा लगा उनको, और बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, बाबा कमरा नहीं ये, अब तो बड़ा बन गया, पहले छोटा था, वही अभी वो बाबा की चारपाई, बाबा की गद्दी, सीन देखो आप। तो बाबा ने बुलाया, मैं नीचे बैठने लगा गद्दी के नीचे, बाबा का, नहीं नहीं मेरे साथ गद्दी पर बैठो। मैं बैठ गया बड़े उससे बैठा, तो बाबा ने एक फिर महावाक्य उच्चारण किए, फिर बाबा ने वो किया, वरदान दिया और सभी के लिए है। बाबा ने कहा, बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी, बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी, वहां कहां है, सत्युग में। अब देखो आप सब बाबा की गद्दी संभालते हैं ना, कैसे, क्या जो आपका घर ग्रस्त भी है या सेंटर्स हैं, चाहे गीता पाठशाला है, चाहे क्या कहते हैं, किसका है वो, किसका है, बाबा का है बाबा का, हम संभालते हैं हमें। अगर इस रूप पे आप संभालेंगे, वो उसकी है, तो जो बाप की गद्दी यहां भी है तो वहां भी है, वहां भी गद्दी मिलेगी। तो आप देखो हमारा एक ज्ञान अमृत प्रेस है, बहुत बड़े कारोबार है, बाबा ने हमें निमित्त बनाया संभालने के लिए, चल रहा है खूब, कराने कौन चला रहा है, हम नहीं चला रहे, हम बताएं आपको, चलाने वाला वो है, हम केवल निमित्त बनते हैं। आप हमेशा समझो मन में सदा बाबा 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 चलता रहे, भले अंदर बोलते भी रहो, और वाचा में कहीं भी कोई मिलता है बाबा का ज्ञान, और ज्यादा मत बात करो, और कर्म में क्या करना है ये बाबा ही करा रहा है, तो कर्म भी ठीक होगा, वाचा भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा। हम तो ये कोशिश करते हैं मन में बाबा बाबा करते रहे, वाचा में बाबा का ज्ञान ही दें, और कर्म जो भी कर्म हम करते हैं ये बाबा करा रहा है, आई एम ओनली निमित्त। तो हर कदम हर कर्म हर वाचा हर वो मनसा में बाबा अगर समाया हुआ होगा तो सब बात ठीक रहेगी, सफल होंगे। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था, बाबा ने वरदान दिया, बच्चे जो ये बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। इससे इतनी उमंग उत्साह आया, देखो छोटा सा हम काम करके आए थे, चित्र बना के आए थे 20, बहुत उन दोनों में जो चित्र होता था एक 20 रुपए का बस, बाबा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें प्रदर्शनी का वो हो रहा था, रेवोल्यूशन हो रहा था, और वो चित्र बन रहे थे जगह। फिर हमने कृष्णनगर में चित्रशाला खोली, बहुत इन्हीं इन महावाक्यों से सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, उन दोनों में तो हाथ से बनता था, सैकड़ों म्यूजियम बने, मेले बने, आर्टिस्ट एम्प्लॉय किया हमने, कितनी सेवा हुई। जो पहले पहले जो सेवाएं बड़ी हैं वो चित्र प्रदर्शनियों से ही बहुत सेवाएं बड़ी। फिर हम वहां शिवा काशी गए, वहां प्रिंटिंग करा के आए, मतलब बाबा ने ये चित्रों से बहुत सेवा कराई। बाबा कहता है, बच्चे ये बनाओ ये बनाओ, ये सीढ़ी का चित्र बना, देखो आप देख रहे हैं ना, ये वहां बनाया हमने, भेजा बाबा को, बहुत अच्छा लगा। बाबा अथॉरिटी से बात करते थे, अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी, कोई डर की बात नहीं, बच्चे बनाओ, गुजाइला नंदा को लिटाओ, देखो लेटा बाबू काटो की स्टेज पर लिटाओ, पीछे फाइबर प्लेन का तकिया बनाओ, है वो देखो, है ना वो, और हाथ में प्याला दो, प्याला भी होगा शायद, वो मांग रहा है और उसे बीक, कि ये इंडिया का हाल हो चुका है। तो ये बाबा ने स्वयं लिखते थे, बहुत लेटर आते थे, बच्चे ये बनाओ ये बनाओ, कोट ऑफ आर्म्स बनाओ, चित्र बनाओ। एक बाबा कहता कोट ऑफ आर्म, थ्री आर्मीज हैव रीअपीयर्ड, वो कौन कौन से, यादव कौरव पांडव उपस्थित है, क्या करत है, तो ये भी बनाओ। इस प्रकार से बाबा डायरेक्शन देते थे, रोज कम से हफ्ते में एक दो पत्र आते थे, लिखते थे, हम बनाते रहते थे, बड़ी खुशी, बहुत मजा, बहुत आनंद में सारा हमारा 30-32 साल तक वहां पर दिल्ली में रहे। सब जगह 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 म्यूजियम बनाने जाते थे, वो होते था, इस प्रकार से चलते रहे। तो वो अब फिर उसके बाद 92 में, जब उसने 84 में जगदीश भाई को बहुत बिजी हो गए फॉरन में, फॉरन की सेवा पे जाने लगे, तो उन्होंने कहा, मीटिंग में कहा गया कि आतम जी को कोई अनुभव है तो ये प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट, ज्ञानमृत का भी डिपार्टमेंट इनको दो। 84 से लेकर के अब तक जगदीश जी के साथ मिलना हुआ, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जो वो कहते थे फट से काम करते थे, अंत तक उनसे डायरेक्शन देते थे। मुझे याद है ग्लोबल हॉस्पिटल में उन्होंने एक किताब थी, कहानियां और कहावतें, ऐसी किताब है ना, तो वो छपी नहीं थी अभी, 4-5 दिन पहले हम उन्होंने कहा छापने के लिए, कहा पेपर नहीं था, तो पेपर मंगाया जोधपुर से, तब उनके हाथ में जाकर के एक दो दिन पहले दिखाई, बड़े खुश हुए, हमें बड़ों की दुआएं लेनी है, कहता है ये भी मेरा काम पूरा हुआ। यानी इस प्रकार से बड़ों से छोटों से सबसे हम दुआएं लेते रहे, ऐसे करते करते फिर हम 92 में यहां पहुंच गए, आगे शांतिवन में आगे, तब से लेकर के प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ा कुछ, ये भी एक ड्रामा अनुसार बाबा का प्लानिंग है। अगर वो यहां ना आता, इतनी कॉन्फ्रेंस होती है, इतने मेले, इतने चीजें होती हैं, अभी चाहिए छपना है, दादियां ये कहती है डायरी छापो, ये करो वो करो, तो ये बाबा ने पहले प्रिंटिंग प्रेस यहां बनवाया, उसके बाद वहां हाल बना, उसके बाद बाबा का आना वहां हुआ। आप देखिए रात्रि को बाबा आते हैं और सवेरे सवेरे 5-4 बजे मुरली सबके हाथ में होती है, तो ये कौन प्रिंटिंग प्रेस छापती है इस प्रकार से। और लोग भी कहते हैं हमारे, जो जहां से पेपर आता है दिल्ली से अभी भी आता है, कहते हैं ये प्रिंटिंग प्रेस आप नहीं चला रहे, उनको इससे निश्चय होता है कि ये आपका ऊपर वाला चला रहा है। छोटे से गांव में इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस चलाना एक कम बात नहीं है। तो हम ये कहते हैं बाबा ये सब करा रहा है, ड्रामा अनुसार सब ये चीज तो होनी ही है। हमें पता है ब्राह्मणों का आने वाला कल कैसा होगा, कैसा होगा बोलो, आगे बढ़ने का है, और दुनिया के लिए आने वाला कल गिरावट है। अब देखो सीढ़ी में हम कहां बैठे हैं, हम सीढ़ी से बाहर आ गए, देखो ना बाहर हैं, संगम पर बैठे हैं, हम ऊपर चढ़ रहे हैं और वो नीचे आ रहे हैं। देखिए हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारा, हम बहुत समय बीत गया, 58 साल तो बीत गए और दादियों को तो 78 साल बीत गए, तो अब बिल्कुल नजदीक पहुंचे आया। अब हम कहां पहुंचे हैं, सड़पंद, बाबा ना सड़पंद कहता है हमारे मुल्तानी में, सड़पंद माने बोलो, गांव के पास आते हैं ना, आवाज गांव तक पहुंचती है, उस सड़पंद कहते हैं, पंथ पंथ माने रास्ता और सड़ माने आवाज। तो वहां पहुंचे, आप कोई टाइम बहुत दूर नहीं है, नजदीक है, होना ही है। ये दुनिया कब तक चलेगी, ये ऐसी दुनिया कब तक चलने वाली है, तो अब क्या करना है, बाबा क्या बन गए, किस समान बनना है, बाप समान बनना है ना, बोलो बनना ही है। और बाबा कहता बनेंगे भी आप, और कौन बनने वाला है, आप इतने दिनों से चल रहे हैं भट्टी करने, बनेंगे भी आप, तो बनना ही है, कैसे बनना है, कितना फासला है बताओ, बाबा और हम में कितना डिस्टेंस है बताओ, नजदीक पहुंचे कि दूर ही, अभी है जी बोलो, नजदीक पहुंच गए और अच्छी बात है। क्या बनना है देखो, मैं बताता हूं 4-5 चीजें, और क्या टाइम कितना हो गया, अभी है ना टाइम बनी, थोड़ा 5 मिनट बस, अच्छा तो देखिए 5 मिनट, हमें कर्मातीत फरिश्ता बनना है, क्या बनना है, कर्मा बाप समान कर्मातीत फरिश्ता, जैसे बाबा कैसे ट्रांसपेरेंट कर्मातीत फरिश्ता बन गए। एक दिन मुरली का ऐसा पॉइंट आया था जो दिल में लग गया, बाबा ने कहा बच्चे मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापार छोड़ दिया, भाईवार भागीदार से कहा जो चाहिए दे दो, ले लिया। अच्छा फिर सब राजे रजवाड़ों को भी छोड़ दिया, कनेक्शन खत्म। सारे बच्चों को भी ज्ञान में लाया, निर्मल शांता और वो उनके सब उस वक्त सभी ज्ञान में थे, ये सोचा नहीं कि बच्चों का क्या होगा। सब तन मन धन लगा दिया, मकान वकान भी लगा दिए। अच्छा फिर क्या कहते, क्यों क्यों किया ऐसा मैंने? बाबा ने खुद ही जवाब दिया क्यों किया। बाबा ने कहा ताकि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए। आज ही मुरली में कहा है पुरानी दुनिया को मत देखो, नहीं तो याद आएगी बाद में। कई कहते हैं हमारा तो बहुत फिक्स है, लाखों रुपया फिक्स पड़ा है, बजाय शिव बाबा पर अपने बुद्धि को फिक्स करने के, उनका बुद्धि योग फिक्स डिपॉजिट पर ही पड़ा हुआ है। हम बताएं क्या काम आने वाला है? अब नेपाल में बैंक खत्म, क्या मिलेगा उनको? ये नहीं कि हमको भीख मांगनी है, भूख रहना है। बाबा ने आज कहा जो सर्विस करने वाले हैं मैं वो उनको भूखा कभी नहीं छोड़ूंगा, ये देख लो। मतलब कहने का है कि ये बहुत उसमें बखेरना, समेटने की बजाय बखेरना, ये ठीक नहीं है। अब समेटो तो क्या बनना है? कर्मातीत फरिश्ता। उसकी पहली स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज बताओ, पहली स्टेज है विकर्माजीत। अब हमारे ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए और नहीं होता होगा, बाबा को फेथ है कि हम बच्चों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। सेकंड स्टेज क्या है बताओ? विकल्पाजीत। मैं ही बता दूं ताकि लेट हो रहे, विकल्प, नो विकल्प। देखिए योग हमारा है शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना, ही योग है। हम बताएं आपको, अगर कोई भी विकल्प आया, भूले चुके भी आए ना, शुद्ध संकल्प से बैटरी चार्ज होती है, यू आर चार्जिंग योर सोल। अगर कोई विकल्प आया किसी कारण से तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। नो विकल्प, मन बुद्धि में कोई भी गलत संकल्प नहीं आना चाहिए, ये सेकंड स्टेज है कर्मातीत बनने के लिए। बाबा पहले कहते थे बच्चे कोई हर्जा नहीं, विकल्प आता है तो कोई हर्जा नहीं, कर्म में नहीं आओ। अब वो स्टेज पार हो गई, नो विकल्प। थर्ड कौन सी स्टेज है बोलो? थर्ड स्टेज व्यर्थ अतीत। व्यर्थ नहीं चाहिए, वो जो है ना क्यों क्या कब कैसे कौन बाबा सुनाते हैं, वो भी अब ये चीजें खत्म, हालचाल में नहीं, स्टेबल। व्यर्थ अतीत वो भी बाबा कहते हैं भले वो अब विकल्प भी नहीं है, विकर्म भी नहीं है, अब मेरे बच्चों में व्यर्थ है, व्यर्थ को समाप्त करना है। चौथी स्टेज है साधारण अतीत। कोई भी संकल्प हमारा साधारण नहीं होना चाहिए, साधारण से परे। हर संकल्प हमारा क्या चाहिए? विशेष चाहिए। हम बताएं आप, इस वक्त अगर हम चाहते हैं कर्मातीत बनना, हमारा हर कदम बाबा का था, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष चाहिए, बाबा का था। बाबा किसी को ऐसे देख लेंगे उड़ जाता था, बाबा किसी पर हाथ रख देंगे वो फूला नहीं समाता था, क्या बाबा का हाथ। तो हमने फॉलो फादर करना है, अगर हम चाहते हैं कि बाप समान कर्मातीत बने, तो हमारा हर कदम, हर कर्म, हमारा बोल, हमारा संकल्प सदा विशेष हो, साधारण नहीं चाहिए। हो सकता है क्या करना हमको, और बाबा ने कोई ज्यादा मेहनत नहीं दी है। कई कहते हैं बिंदु बन बिंदु को याद करो, करो अच्छी बात है। अगर वो नहीं टिकता बिंदु, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो, यानी जो पावरफुल संकल्प है उनमें मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, परम धाम का वासी हूँ, अकाल तख्त निशीन हूँ, ये सारे शुद्ध संकल्प है। और मैं बाबा ने जो बताई है बहुत वंडरफुल एक तरीका बताया है, पांच स्वरूपों में सदा घूमते रहो, इससे मेरे में तो बहुत चेंज आया। हम बता दें, अगर आप रमणीक बनाओ याद को, याद को केवल सूखा सूखा मत बनाए, बैठे हैं पांच स्वरूप में घूमो, निराकारी, निराकार में बहुत लंबी लिस्ट है, जो बाबा ने निराकारी बताई है बातें, सब में जाओ, परम धाम जाओ। ये मैं आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा गुणों को याद करो, शिव बाबा गुणों को याद करो, परम धाम को याद करो, परम धाम को यानी मन में शुद्ध वाजिस योगा, मन मना भाव और बुद्धि योग, मन में शुद्ध संकल्प चलते रहे चलते रहे, और बुद्धि शिव बाबा को देखती रहे परम धाम में। यह हम तो ऐसे करते हैं, मन में शुद्ध संकल्प आ रहा है बहुत थोड़े भी, मैं लाइट और माइट हूं, और सामने परम धाम में रेड लाइट में बिंदु चारों तरफ उसके लाइट, वो उसको देख रहा है, उससे क्या है कि और बुद्धि कहीं जाएगी। तो ये शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने से क्या है, पावर आती है और प्योरिटी आती है। सत्युग में क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट, वो आती है पॉजिटिव संकल्प से, इन शुद्ध संकल्पों से आप इसमें लगे रहो, इसमें लगे रहो शुद्ध संकल्पों में, पांच स्वरूपों को याद करते रहो, निराकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निरहंकारी और आकारी, ये पांच शब्द है, पांच शब्द भी याद है तो सारे स्वरूपों में घूम जाएंगे आप, तो याद करते रहिए। यानी हम ब्राह्मणों को बहुत काम है, कहते हम क्या करें, सेवा तो है नहीं, ये बहुत सेवा है, यही वास्तव में यात्रा है, यात्रा ट्रेवलिंग है इन टाइम एंड ट्रेवलिंग इन स्पेस है। आप परम धाम गए तो यात्रा की परम धाम पहुंच के, या वो ट्रेवल किया ना आप वहां पहुंच गए, सूक्ष्म बतन गए तो यात्रा की स्पेस की ट्रेवल की, आप सत्युग में पहुंचे तो टाइम की ट्रेवल किया, सत्युग अभी कब आएगा, देरी है ना अभी, तो फटाफट आप वहां पहुंच गए, संगम पर गए, वो पूज स्टेज पे गए, ये ट्रेवलिंग है, ये यात्रा वास्तव में यही है। इस यात्रा में रहे हम, और कुछ नहीं, शुद्ध संकल्पों का धारा बहाते रहे, उसमें इंटरेक्शन ना हो, जब योग में बैठते हैं कभी भी शुद्ध संकल्पों की धारा बहाओ, नो इंटरेप्शन, और दृढ़ता लाओ। हम तो छोटा मोटा यही पुरुषार्थ करते हैं, और बाबा को गुणों से संबंधों से याद करो। हम बताएं हम आपको कि मैं जो अनुभव भी करता हूं, और हमने अनुभव बाबा साकार बाबा से भी किए हैं, नौ हमारे मुख्य संबंध हैं, सुनाऊं थोड़ा पांच मिनट, नौ संबंध कौन से हैं। पहला संबंध कौन सा है डियरेस्ट, सबसे पहला संबंध कौन सा है बताओ, बोलो, फर्स्ट है डियरेस्ट मदर, हमारी मीठी मीठी मैया है, आज देखो माँ की, ब्रह्मा बाबा साथ, हर बात हम कोई शिव बाबा से नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा साथ साथ है, बा प्लस बाबा होता है। डियरेस्ट मदर क्या ज्ञान दूध पिलाती है और हमको हृष्ट पुष्ट बनाती है। सेकंड संबंध कौन सा है, स्वीटेस्ट फादर, क्या देता है, दाता बन के स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा देता है, दे दिया हमको, मिल गया ना आप सभी को, मिल गया है, हम मालिक हैं स्वीट होम और स्वीट राजधानी के। थर्ड कौन सा है, हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, सिंपल पढ़ाई और हाईएस्ट स्टेटस देता है, 21 जन्मों के लिए ऊंच पद की प्राप्ति कराता है, इतना ऊंचा पद और सिंपल पढ़ाई, क्या बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का चक्कर है, चक्कर घुमाओ तो क्या बन जाएंगे आप बताइए, चक्कर फिराओ चक्रवर्ती राजा बन जाओ, कितनी सिंपल है, माताएं कर सकती है, ये बाबा नहीं कहे 4,32,000 करते करते भूल ही जाओगे, केवल 5,000 और उसके चार भाग कर दो 12,500, कितनी सिंपल पढ़ाई, माताएं भी कितनी अच्छी पढ़ सकती, सिंपलेस्ट पढ़ाई और हाईएस्ट स्टेटस, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोई अलजबरा नहीं, सिंपल पढ़ाई आत्मा परमात्मा की। और फोर्थ क्या है? होलियस्ट सतगुरु, परम पावन पतित पावन जो है हमारा सतगुरु है। क्या देता है? आशीर्वाद, वरदान दे रहा है, रोज वरदान हमको मिलते हैं, उसको वैसे याद करो। देन वो अनफेलिंग फ्रेंड, सखा हमारा अनफेलिंग, कभी धोखा नहीं देगा, साथी है, आपका हाथ पकड़ के चले ले जाएगा, आपने कभी साथ छोड़ने वाला नहीं, वही है और कोई किसी का नहीं कोई कर सकता स्वयं शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा साथ आई है, अनफेलिंग फ्रेंड। और क्या है? सुलोना साजन, चाहे माताएं हैं चाहे भाई हैं, कौन है साजन हमारा? कौन है बोलो? देव मान तोड़ो, साजन हमारा वही है, वो हम उनकी सजनी है, समझे? हम साजन सजनी, तो क्या करता है? हमें सजाता है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, सजाकर कहां ले जाता है? पियर घर। और कहां भेजता है? ससुर घर, विष्णुपुरी में भेज देता है। ये रमणीकता से याद करो। फिर आगे गया सुप्रीम सर्जन, वही इलाज करेगा, वही हमारा ऑपरेशन, बहुत अनुभव हमारे पास आते हैं ज्ञान अमृत में, कैसे बाबा ने हमारी मदद की, कैसे क्या सब करने वाला है, यानी सुप्रीम सर्जन है। और है फेथफुल चाइल्ड, बच्चा भी वही है, वो आता है आजकल बच्चे में क्या कहता है, आगे वो लेके वो दीपक लेके ले चलते हैं जब इंसान मरता है, कुछ नहीं, दीपक जलाने वाला भी वही है, वही उंगली पकड़ के हमको भावसागर पार करेगा। और नावा है मोस्ट बिलवड महबूबा, माशूक, सत्यम शिवम सुंदरम, उसको याद करो, किसी में आंख नहीं डूबनी चाहिए, चाहे कितना भी सुंदर हो कोई, सबसे सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम एक हमारा शिव बाबा है। तो ऐसे याद करेंगे उनको, संबंधों से याद करो, पांच स्वरूपों से याद करो, उसको गुणों से याद करो, जिससे क्या होगा, ना झुटका आएगा ना घुटका आएगा। तो क्या होता है, बैठे हैं, मैं बिंदु हूं, बिंदु को देखते रहेंगे, झुटका खाते रहेंगे, ऐसा कभी होता है? आप तो नहीं करते, लोग करते हैं ऐसा। इसलिए आप संबंधों से, गुणों से, हर प्रकार से चेतन होके बैठेंगे तो जो आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। सुना, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अब टाइम बहुत दूर नहीं, नजदीक है, अब सब मिलकर हम चलेंगे अपने घर, फिर कहां आएंगे, अपनी राजधानी में। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बाबा की पालना को शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, ऐसे गीत में सुना, लेकिन आपने फिर भी आपने शब्दों में हमारे आगे आपका अनुभव रखा। कई बातें रह गई है, ऐसे भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि सागर है।
देखिए, हमारा लौकिक परिवार सब ज्ञान में आ गया, तुम्हारी सिस्टर भी ज्ञान में आई, वो 10वीं पास की थी, तो बाबा मम्मा से मिलने के लिए आए, तो उसने, हमारे फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बनाएंगे, तो मम्मा ने कहा नहीं, डायरेक्ट अभी तो सोचते हैं आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, तो मम्मा ने कहा नहीं, स्पिरिचुअल डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाबा मम्मा ऐसे कह रहे हैं तो ठीक है, तो वो सेवा केंद्र पर भेज ही दिया कहीं। तो बताइए, वहां पर गए तो उनको तबीयत खराब होगी, यानी कुछ समय के बाद, दो साल के बाद बहुत बीमारी सी लग गई कोई, तो बाबा को लिखती है, वो बाबा मैं जाती हूँ अपने लोग के घर, ठीक ठाक होके फिर आऊंगी। बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे पास आओ। बाबा ने उनको अपने मधुबन में बुलाया। अब देखो कैसे पालना करते हैं, अब भी होती है। बाबा उनको रोज सेब काट के मक्खन लगा के खिलाते थे, और फिर वजन करते थे, वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ये बाबा की पालना, क्या मैं बताऊं, बाबा मम्मा की पालना थी। बहुत ध्यान, अब तो इतने बढ़ गए हैं, इतना ध्यान करना मुश्किल है। बहनें तो करती होंगी अपने अपने सेवा केंद्र पर, लेकिन बाबा मम्मा जो थे डायरेक्ट इस प्रकार से पालना करते। तो ये जब हम सुनते हैं, आप बताओ अगर ऐसे पालना की हुई है तो बाबा मम्मा के वफादार फरमा बरदार और क्यों नहीं होंगे वो। अब उनकी उम्र भी 70-70 साल सब की होगी है, लेकिन बाबा के ज्ञान को बढ़ा करके आगे और सब सेवा कर रही है जी। आजकल अमृतसर जो सब जोन है वहां पर है, उनकी इंचार्ज है, आते रहते हैं। तो ये मैं बता रहा था बाबा मम्मा की पालना हम क्यों कहते हैं, हमें भी सीखना। हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में कोई बीमार होता है, कुछ होता है, हम उसका पूरा इलाज कराते हैं। ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें, वो बाबा मम्मा से सीखा है हमने।
बहुत बहुत धन्यवाद आत्म प्रकाश भाई को, हम एक हाथ की ताली से करेंगे कि आपने सागर को गागर में समाकर हमारे सामने रखा। बाबा ने कैसी पालना की वो सुन करके अभी बेहद का कार्य बन गया है। तो सेंटर्स वो छोटे छोटे यूनिट है जो बाबा ने यहाँ किया, वो हर सेंटर्स पर भी हो, ऐसे बाबा सिखाने के लिए भी सब कुछ हमें करके दिखाया है। तो इस प्रकार की बाबा की पालना को लेकर के आत्माएं सारे कल्प के लिए शक्तिशाली हो जाती है, आंतरिक रीति से भी। बहुत बहुत धन्यवाद।